பராகிருஷ்ணவர்வந்தம் பரம் பிரம்மனராகதை சௌந்தரிய சார சரஸ்வம் வந்தே நந்தாத்யம் பிரபன்ன பாரிஜாதாய தோ ஸ்ரீ சைவ பாணயே ஞான முத்ராய கிருஷ்ணாய வசுதேவ சுத்தம் தேவம் கம்சாமூலமர்த்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும்
ஜீதாஜிக்கு கீதா ஜானே வாழ கோயில் சுனே அச்சா லேகா சுபே சுனே பூச்சனா பூச்சோ மேரே மனமே ஆதி சுபகி மனமே ஆய மேரே பகவான் லிஃபா அபரா பிரகதி பரா பிரகதி ஜீவரூ ஜத் ஜத் மேக்கா ரீ மனசி டீக்கி சமாதான மேரே பூரா மேரே மனமே ஆய் வோ கி மேரே சந்தோஷ ஹுவாதம் தாரியத்தை ஜகத் ஆனா புஸ்தகம் ஜித்தி சன்ஸ்கிருத हिंदी की है अंग्रेज हम जानते नहीं तो मधुसूदनी देखिए मधुसूदनी नीलकंठी ये व्याकरण का विषय खूब लिखती है अच्छी दोनों टीका बड़ी अच्छी इसमें नाम रूप ये व्याकरवाणी ये श्रुति लिख दी है मधुसूदनाचार्य श्रुति हम समझे नहीं ठीक तरह से समझ में नहीं आई हमारी और अब भी ये ठेका नहीं लेता हूं मैं समझ गया हूं परंतु मेरे को अच्छा लगता है हमारे संतोष होता वो शुभ अर्थ बताया जिसमें खास मेरे बताने की बात थी ये एक बताता हूं अलग करके आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति बताई इसमें सबके अंत में अहंकार आया பூமி ராபோ அனல வாயு கரு மனோ புத்தி ஓர் அகங்கார இசியம்மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா அகங்கார யே அஷ்டதா பிரகிருதி அபரா பதாயி தோ அகங்கார அபரா பிரகிருதி மே ஜீவ பூதா மாவுதே ஜார் ஜெகதி யே பரா பிரகிருதி மே தோ அஹம் ஹே உஸ்ஸே ஜீவ அலக ஹே अहरूप नहीं है खास ये ख्याल कराना था हमें हमारे कहने का तात्पर्य था कि अहम के साथ घुल मिलकर जो मनुष्य मानता है मैं यह हूं वो मैं अलग है तुम अलग हो मैं तो है अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति भगवान की प्रकृति सब होते हुए भी एक पृथ्वी है एक अहम है ये आठ प्रकार के भेदों वाली है जिसमें पृथ्वी भी है अहम भी है परंतु अपरा है सभी है। जितनी है वो अपरा है तो अहम भी अपरा प्रकृति है हम आपके साथ नहीं है मैं हूं जो मानता है हरेक प्राणी मानता मैं हूं तो सर्वाणी की बजाय सब जितने प्राणी एतद योनी नहीं अपरा प्रकार अपरा परा प्रकृति मिले हुए हैं इसी में यावत समझाए थे किंच स्तर और जंगम जितना है वो भी इन संयोग से क्षेत्र क्षेत्र की गई तो ये क्षेत्र क्षेत्र की गई संयोग से प्राणी होते हैं परंतु क्षेत्र और क्षेत्र इदंग से इदंग को होते क्षेत्रम परंतु जीव को इदंग नहीं कहते एतद यो वेत्तितम प्राणु क्षेत्र जो लोग कहते हैं इदंता से जीव नहीं कहा जाता इदंता से अपरा प्रकृति कही जाती तो क्षेत्र में गया अहम, क्षर अक्षर पुरुषों से तो वो क्षर में गया, सब अक्षर के साथ नहीं है। अक्षर के साथ भगवान की एकता है, क्षर के साथ इनकी अहंकार सहित एकता है। तो खास मेरा विचार इस तत्व के समझाने में था। अब उसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं उसे भगवान जाने, यार आप लोग जानो। पर मेरा खास लक्ष्य था ये कि अहम अहम जो कहते हैं मैं हूं ये निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाए मेरी वस्तु है इसमें छूट जाए और निरहंकार अहंकार से छूट जाए, वो शांति को प्राप्त होता है। तो अहम से भी छूटना है। आज अहम को ही मुख्य मानते, अहम को मुख्य मानते, तो मुख्य दिखता है, अनुभव है अहम मुख्य सब में, मम आदि में सब में अहम मुख्य। पर अहम और मम रहित होने से परम शांति की प्राप्ति होती है, निर्मम निरहंकार से शांति बनी होती। तो अहंकार को बोझल बनावे, ममकार करके बोझल बनावे, तो इनसे वास्तविक तत्व नहीं मिलता। तो खास मेरा विचार कि जीव भूतां भगवान ने अलग कहा, उसको परा प्रकृति बताया और अहंकार तक अपरा प्रकृति बताया। इसका तात्पर्य कि जाति दो है, अहंकार का जाति है जड़ और स्वयं की जाति है चेतन। जीव रूप बना हुआ वो परा प्रकृति है, सदा ही परा रहेगा, वो सदा की अपरा कभी नहीं होगी और अपरा परा नहीं होगी कभी, अपरा परा नहीं होगी, परा अपरा नहीं होगी, बिल्कुल दोनों अलग है, इसे जीवनी ही नहीं। और जितने सात्विक राजस तामस भाव है मेरे से अपने, मैं उनमें नहीं हुए, मेरे में नहीं है, ये सब प्रकृति के है, मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, वो होता है मेरे से ही। नौवें अध्याय में बात बताई, वो संकेत किया कल्पक्षय, कल्पक्षय में तो मेरे लीन होते हैं, कल्पा भी विशेषा में हम तो लीन होते हैं विशेषा में हम। और एतद् योनिः में कारण बताया, जिसमें मैंने कहा मम प्रभव प्रलय, प्रभव है ये निमित्त कारण है और प्रलय है ये उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी में लीन होगा, सोना गहने में लीन होगा, गहना सोने में लीन होगा, जितने अस्त्र शस्त्र है लोहा बढ़ेगा अंत में, जितनी ये पदार्थ है सब मिट्टी बढ़ेगा। तो मिट्टी में उत्पन्न हुए, मिट्टी में लीन होते हैं, लीन उपादान कारण में होते हैं। घड़ा कुंभार में लीन नहीं होता, घड़ा मिट्टी में लीन होता है, बनाने में कुंभार की मुख्यता है, घड़े की मिट्टी में मुख्यता है। ऐसे संसार सबकी अपरा प्रकृति में मुख्यता है और जीव की परा प्रकृति ये परमात्मा के साथ मुख्यता है इसकी, इस अपरा के साथ मुख्यता नहीं है। तो आप अहम नहीं हो, ये खास बात बता रहे थे, मैंने ये शुभ प्रकट किया था, मेरा खास बता रहे गुड़ा भी संधि, अहम आप नहीं हो, आप अहम नहीं हो, ये बता रहे। अब इसमें कोई शंका उत्पन्न होती हो पूछो, संदेह उत्पन्न हो तो पूछो।
महाराज सातवें अध्याय में आपने जो गीता में लिखा है साधक संजीव ने भी, अहम को आपने दो तरह से बताया, जो अहम अहम है मनुष्यों के उठता है अहम अनुभूति, ये आपने अपरा प्रकृति प्रकृति बताई, और फिर वही जब और आगे बढ़ता है जब उसमें आता है उसको आपको परा प्रकृति में बताया, ऐसा बताया आपने।
भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये परा में नहीं है, इसमें परा है, उसके बिना कर्तृत्व हो सकता है, भोक्तृत्व हो नहीं सकता। कर्तृत्व हो सकता है प्रकृति और भोक्तृत्व बिना परा प्रकृति के नहीं होगा।
अहम में बताया होगा आपने, अहम में भोक्तृत्व कर्तृत्व,
हाँ तो हम बताओ कोई अर्ज नहीं है,
वो जीव में समझ गए,
हाँ जीव में नहीं है,
परा प्रकृति में समझ गया,
परम प्रकृति नहीं है, अप्रकृति है। मैंने दोनों भेद बता दिए ना, अहम के दो भेद हुए, एक अहम परा प्रकृति हुई, एक आपने अपरा प्रकृति मानी और एक परा प्रकृति मानी आपने। तो परा प्रकृति का तात्पर्य कि बिना चेतन के भोगता पर नहीं सिद्ध हो सकता। चेतन बोले कैसे होगा, एक और बात आई है, कहाँ लिखा है मेरे है सच में लिखा है संजीवनी में, वो बात ध्यान दे रहे आप लोग सुने। एक अहं कृति होती है, एक अहं स्फूर्ति होती है, ये मैंने लिखा है। तो अहं कृति है वो तो है प्रकृति की, अहं स्फूर्ति है ये है श्री स्वयं की। अहं मेरा अहंकार मेरा रूप नहीं है, अहं मैं जो हूँ वो ये नहीं हूँ किंतु ज्ञाता हूँ, ऐसी जो स्फूर्ति एकदम साफ ही हो जाए, जैसे सूर्योदय में प्रकाश हो जाए, जैसे आदेश हो जाए, वो अहं स्फूर्ति है, वो वृत्ति नहीं है, ये अहंकृति नहीं है। अहंकृति और अहं वृत्ति अलग है, इनसे अलग जो अहं का वास्तविक स्वरूप है उस तरफ जो बोध हो जाए उसको कहते अहं स्फूर्ति। तो अहं स्फूर्ति और अहं वृत्ति दो बताया है, तो अहं में दो भेद बताए, परंतु अहं की जहां स्फूर्ति होगी वहां बट जाएगा, अहं का अभाव हो जाएगा, स्वरूप रह जाएगा। इसमें बुद्धि यही है कि कर्तापन में तो भगवान ने प्रकृति पर जोर दिया है, गीता पढ़े हुए विशेषता से ध्यान दे, दूसरे आदमी ध्यान से तो फायदा है, पर गीता पढ़े हुए विशेष है। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि, कर्म जितने प्रकृति के द्वारा ही होता है, प्रकृति गुणे ही कर्माणी सर्वस्व, प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो गुण ही करता है, वन गुणों में वर्षाव करता है, प्रकृति ही करता है। कहीं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्षति, तो प्रकृति ही करता है। कर्तापन स्वयं में नहीं बताया है भगवान ने, कार्य करण करते थे हेतु प्रकृति ही। अब पूरे गुणा गुणेशु वर्तन्ते कह दो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते कह दो, अपरा करके वो कुछ कह दो, कुछ भी कह दो, प्रकृति के द्वारा कर, ये सब क्रिया प्रकृति के द्वारा ही होती है, जीव के द्वारा नहीं होती है। पर कार्य करण करते हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोगते हेतु रुच्यते, सुख दुख का भोगता बिना चेतन कौन बढ़ेगा, क्रिया चेतन में नहीं होती, जड में ही होती है, प्रकृति में ही होती है क्रिया, जितनी है क्रिया सब पदार्थ जितने हैं क्रिया रूप से है, क्रिया रूप और पदार्थ रूप से प्रकृति है केवल, इनमें कोई शंका होती है। पर भोक्तृत्व है ये बिना चेतन के नहीं बनता। अब भोक्तृत्व हेतु बता दिया तो तत्काल कहना पड़ा कि पुरुष प्रकृति से तो नहीं भोगते, भोक्तापन प्रकृति में स्थित होने से होता है, प्रकृति में स्थित तो भोक्तापन नहीं है। भर्ता भोगता महेश्वर परमात्मा की साक्षी तो देह इसमें पुरुष पर, ये परा प्रकृति पर ही रहेगा, भोगता प्रकृति होने से है, और भोगता होने से सुखी दुखी होता है, और सुख दुख ही भोगता होता है। परंतु दोनों विशेष बता दी भगवान ने कि पुरुष सुख दुख का नाम भोगते से हेतु है, परंतु प्रकृति और नहीं तो सम दुख सुख, सुख और दुख में सम रहेगा, सुख आ जाए तो वही बात है, दुख आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कौन होगा, वो स्वस्थ होगा, सम दुख सुख स्वस्थ जो स्वामी स्थित होगा। अपरा परा प्रकृति है, केवल परा का परा में स्थिति हो जाएगी तो सुख दुख में फर्क नहीं पड़ेगा, सुख आया दुख आया आगंतुक होंगे, रात आई दिन आई कोई मतलब नहीं अपने, ऐसे समुख सुख कब के स्वस्थ, अब परा प्रकृति अपने में स्थित हो गई, तो अर्थात प्रकृति में स्थित नहीं रही। पुरुष सुख दुख का नाम भोगते, सुख दुख का भोगता पर हेतु कौन के प्रकृति स्थ, और प्रकृति से नहीं हुआ तो समुख सुख स्वस्थ, ये स्वस्थ है, स्वयं सुख दुख नहीं है। इसमें आप समझ कर प्रश्न करो, वही तो मैं कहता हूँ कि बिना भोग बिना चेतन के भोगतापन बनता नहीं,
कर्तापन भी तो बना है,
हाँ तो कर्तापन भी प्रकृति को लेकर के है,
तो प्रकृति लेकर चेतन का समझ जोड़ देते हैं, मैं करता हूँ,
हाँ
भाव होने से तो कर्तित्व आएगा।
हाँ तो कैसा भाव हुआ है तो प्रकृति में घुल मिल गया तब हुआ है, स्वयं में नहीं है।
जब जीव है तब तो उसकी प्रकृति में ही स्थिति है।
हाँ जीव तो है पर जीव भूतम कहा, जीव भूत सनातन, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं। तुम जो गया मम्मी मानसो जीव लोके जीव भूत अपरे में इतना प्रकृति विद्या विद्धि में परम जीव भूतम।
स्वामी जी किसी श्लोक की व्याख्या में आपने साधक के जीवन में लिखा है कि जीव को परा प्रकृति नहीं कह सकते, जीव चेतन है तो आपने लिखा है, उसको क्यों परा प्रकृति कहा? उसने अपरा प्रकृति को अपने में ममत्व कर लिया, अपना मान लिया, इसको आपने उस पर परा प्रकृति जीव को कह दिया, ऐसा आपने लिखा है।
हाँ तो वह बात ठीक है, वो लिखा है उसका अर्थ अभी कहता हूँ, वही अर्थ है। परा प्रकृति कहने का तात्पर्य भगवत स्वरूप है, वो इस जाति की नहीं है, उसकी जाति भगवान के साथ है। इस वास्ते वास्तव में इसका स्वरूप भगवान से अलग नहीं है, इसको मैंने नित्य योग कहा है, परमात्मा के साथ नित्य योग है। अज्ञान से अज्ञान अवस्था में भी ना तो इससे भगवान अलग हुए ना भगवान से ये अलग हुआ है, ये नित्य योग है। गीता उसको योग कहती है, नित्य योग को। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग भी, दुख संयोग क्या है? अहं के साथ है दुख, ये मिलते ही नित्य योग है। तो इन बातों को आप समझ लो फिर संदेह नहीं पड़ेगा। संदेह हो तो बोलो।
महाराज जो केशुराम जी प्रश्न क्यों ना को ये समझ में आयो कि जैसे चेतन का संबंध बिना प्रकृति में जो कर्तृत्व है, क्रिया तो है प्रकृति में, कर्तृत्व चेतन का संबंध बिना कर
हाँ हाँ तो कर्तृत्व ठीक है, तो वह मैं कर्तृत्व के बीच में मुख्यता चेतन की नहीं है, जड़ की है। तो मतलब भोगता बनाएगा कैसे?
तो
चेतन हुए भी क्रिया में जड़ की प्रधान रहेगी करने में। जैसे मोटर चलाओ, ध्यान देना बड़ी बढ़िया बात है, सब समझ सकते हैं, ये नहीं कि वो पूछते हैं तो वो ही समझेंगे, आप सब समझ सकते हैं, ऐसी बात बताता हूँ, ध्यान देना। कोई एक मोटर चलाता है और मोटर से एक आदमी के चोट लगी, वो चक्कों से पिस गया, मर गया उसी क्षण, तो पुरुष को तो उस मरने वाले को तो ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, वो मोटर से मर गया, परंतु दंड मोटर को नहीं छुएगी, ड्राइवर को छुएगी। दंड बता, दंड का विधान होगा तो दंड होगा ड्राइवर पर, पकड़ा जाएगा ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर पकड़ा जाए तो ड्राइवर के पास में एक ड्राइवर बैठा था, वो पकड़ा जाएगा क्या? ड्राइवर पकड़ा जाएगा कि उसको पकड़ जाएगा, उसको पकड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके चलाने से और वो आदमी मरा, वो चलाने वाला पकड़ा जाएगा। इसी तरह से कर्तापन में अगर ये हेतु न हो तो दंड कौन भोगेगा, पाप और पुण्य कौन भरेगा, नरकों में कौन जाएगा, स्वर्ग लाख में कौन जाएगा, देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच कौन भरेगा? तो ये कर्ता बनता है, मन कर्ता है नहीं, और भोगता तो इसके बिना हो नहीं सकता, और कर्ता भी बिना जड़ के हो नहीं सकता, मन कर्ता में प्रधानता जड़ की रहेगी, भोगता में प्रधानता चेतन की रहेगी। अब बोलो, दोनों को मिले एक योनि नहीं बताया ना, तो दोनों कारण पड़ेंगे, क्षेत्र क्षेत्र की संयोगात, यहां पर समझाते स्थावर जंगम जिद क्षेत्र क्षेत्र की संयोगात, ये संयोग है, संयोग है वियोगम योग संगीतम, संयोग से वियोग होने ना वो योग है। तो योग क्या होगा? परमात्मा के साथ नित्य योग है, वो अभी नित्य योग का अनुभव हो जाएगा, नित्य योग होगा नहीं, वियोग हुआ ही नहीं, योग कैसे होगा? संयोग का वियोग होता है, नित्य योग का वियोग नहीं होता, नित्य योग है वो, अरे अभियोग अगर हो तो नित्य योग कैसे होगा? उस नित्य योग को गीता योग कहती है। अब शंका हो तो बोलो।
ये एकदम भारी जगत है तो एकदम और अहम दोनों मतलब जड़ा प्रकृति के अंतर्गत चले
दोनों में
उनको जो अपने में स्थिति मान लेना मनस्थित मान लेना
ये परा प्रकृति ये परा प्रकृति मानती है तो मानना में जड़ में मान्यता नहीं होती चेतन में मान्यता ठहरती नहीं बदलती रहती है क्योंकि चेतन खुद में मान्यता है नहीं ये तो तत्व है इसे कभी भोगता बरसा भोगता मेरे बकरी नाम हो जाएगा क्योंकि खुद में तो है नहीं प्रकृति का संबंध किया तो भक्ता भोगता भी हो जाएगा भरता भी हो जाएगा महेश्वर भी हो जाएगा देह स्मिन पुरुष पर इसे है पर है बिल्कुल पर है तो पर है उसका अनुभव हो जाएगा ना तो सुख दुख सुख स्वस्थ तब स्वस्थ हो गया और बोलो पूछो
तो आप ये एकदम जगत का आप किस प्रकार
मानो ये जगत है ये केवल जीव की मान्यता है ना तत्व की दृष्टि में है ना भगवान की दृष्टि में है भगवान की दृष्टि में जो मैं ही मैं हूँ और तत्व की दृष्टि में वासुदेव सर्वम है कहाँ जगत कहाँ है और तो प्रकृति साथ अपना संबंध मान लिया अब बस मौज करो जीव अगर जन्मेगा मरेगा जन्मेगा मरेगा सुख और दुख हो गया पर भोगने में चेतन की प्रधानता है और करने में प्रकृति की प्रधानता है जैसे मोटर का दृष्टांत दिया मैंने स्मृति तो जैसा किया वैसा होता है स्मृति होती है भोग से
जब ज्ञान हो गया कि मेरा स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं मैं परमात्मा का हूँ तो
विस्मृति होती है जब तक मैं परमात्मा का स्वरूप है सुनी है मानी है अनुभव नहीं हुआ है अनुभव अपने कैसे हो जाएगी यश ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं आशीष बांधो जिसके जानने पर ऐसा मोह फिर नहीं होगा होगा ही नहीं होता है तो जाना नहीं है सीखी है एक जानने की बात होती है एक सीखने की बात होती है सीख ली तो सीखे जो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है बिल्लिया हो जाए टें करता है अब राधे कृष्ण ले मृत्यु समय में क्या जाने तो इस तरह से वो बोलते अहम ब्रह्मास्मि तो होता है मुझे नहीं कुछ नहीं है सीखी हुई बात है मान ली सामने कैसे मान ली ऐसे मानिए माननी नहीं होती अनुभव होना चाहिए साक्षात अनुभव एक बात याद आ गई थोड़ी गर्म आ गई एक छोरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे बालक हो गए तू जगा देना तो माँ ने कहा दुनिया को जगाएगी तू तेरे को जगाने की जरूरत नहीं है अब भोली है बेचारी कि मेरे को जगा देना भाई जानी? तो वह ऐसा तमाशा नहीं है वो ऐसी लाय नहीं है तू दियो देर देखे लाय लगी साग लगी गांव में तो लाओ लाओ दीपक करोगे मोमबत्ती लाओ बैटरी लाओ क्या कर लाए लेकिन देखना ही होती है तुम्हें जगाने की जरूरत है अनुभव ना उस पर है सुनिए वो अनुभव नहीं है इस बात सोरी कहती है माँ मेरे को जगा देगी तूने दुनिया को जगाएगी तू तेरे को जगाने की जरूरत नहीं है पता लगेगा तो बालक पैदा होगा जब इस तरह से जिसको ज्ञान हो जाता है वो बालक पैदा होता है ऐसा ज्ञान है वो ये ज्ञान देखने का नहीं है तमाशा नहीं है ये ज्ञान कोई दीपक देख लाए देखता है क्या तो मान लिया सुन लिया अपने मान लिया ये तमाशा है शुरू में विस्मृति नहीं होती विस्मृति उसी में होती है हाँ स्वीकृति तो बिना चेतन कौन करेगा आप बताओ। हाँ स्वीकृति के कारण से ही जीव है, केवल अस्वीकृति करनी और कुछ नहीं है।
स्वीकार करना रहता है क्या?
ना स्वरूप स्थिति स्वीकार नहीं होना, स्वीकार अस्वीकार नहीं है। स्वरूप में स्थिति करनी हो तो इसको अस्वीकृत कर लो, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। जो स्वीकार किया है आपने उसमें अस्वीकृति हो जाए सर्वथा तो स्वरूप स्थिति हो जाएगी, सतह स्वभाव करनी नहीं पड़ेगी।
महाराज जी आपकी बात सुनते हैं ना तो सिद्धांत से तो समझ में आती है, पर प्रयोग अवस्था में कठिनाई आती है।
कठिनाई आती है, समझी नहीं है, सुनी है, सीखी है। मैं दो शब्द कहा है, सुनी है और सीखी है। यदि कठिनाई होगी सीखी हुई बात कैसे काम आएगी? तोते का दृष्टांत दिया मैंने, अब राधे कृष्ण को उपग्रहण कर और टें टें करेगा। तोते की तरह है, तोते की तरह
बीस पीढ़ियाँ हो गई, आगे कोई ऐसी बात दिखती नहीं है।
मैं कहूँ 50 पीढ़ी हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए तो क्या हो, है जगह वहाँ का वही है, पीढ़ियाँ पड़ी वो तो वहाँ का वही है। देखो ये 1000 पीढ़ी होने से अभ्यास में तो फर्क पड़ेगा, स्वरूप में फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ा नहीं कभी, पढ़ेगा नहीं कभी, पढ़ सकता नहीं कभी। अभ्यास होता है मन बुद्धि के संबंध से, और बोध होता है स्वयं इनके संबंध विच्छेद से। आप ठीक से समझो, मन बुद्धि के संबंध बिना अभ्यास नहीं होता, और मन बुद्धि के संबंध विच्छेद हुए मन बोध नहीं होता। बोध अभ्यास यही तो नहीं है, 1000 पीढ़ी हो जाए अपने क्या हुआ, कुछ नहीं। पढ़कर पंडित हुआ, चारों वेदों को छह शास्त्रों को जान लेते क्या हो जाएगा, एक अभिमान और भर जाएगा नया, मैं पढ़ा लिखा हूं, एक बहम और पड़ जाएगा। पढ़े अपढ़े सारी के बरोबर है दोनों, पढ़े अपढ़े सारी के जो आत्म नहीं रख फिर शादी और चित्र रखा दोनों डूबन पक, चित्र सिलाइया ही सुंदर लगेगी और अनघट और अच्छा नहीं लगेगा, पर डूबने कोई फर्क नहीं है। बढ़िया से बढ़िया घड़ा डूब जाएगा, घड़ा कर किया अनघट भी डूब जाएगा। तो पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख सिर शादी चित्र रखा दोनों डूबन पक, दोनों डूबेगा। 1000 पीढ़ी हो जाती क्या होगा, कितने ग्रंथ लिख देते क्या होगा, जाना नहीं तब तो नहीं जाना, और तत्व जानने के बाद में इधर उधर होते नहीं, इधर उधर होता तो तत्व जाना नहीं अभी। और बोलो कोई बोलना हो तो
मानने से जानना हो जाएगा क्या?
ना हो जाएगा, अगर मानने का आदर करेगा तो, मानने मात्र से नहीं। इनका मतलब कि मैं जड में नहीं, जड मेरे में नहीं, मतलब इतना ही है सूक्ष्मता से कि तीनों गुण है मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, कि मैं दक्षिण प्रकृति सोचते सतरासर हूँ, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति पैदा करती है सरासर को। तो सात्विक राजस तामस है सत्वों रजस में गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेरणा मेरी रहती है, उनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं है। मेरे वो गुणों में ढूंढे तो मैं नहीं मिलूंगा, मेरे में गुण ढूंढे तो नहीं मिलेंगे। कार्य मेरे द्वारा सात्विक भी हो, राजस भी हो, तामस भी हो, प्रकृति को लेकर के ना संबंध भगवान की स्वतंत्रता में है। एक बढ़िया मोटर है, आराम से बढ़िया साइकिल है चलाते हो, और एक खराब हुई हुई मोटर है आप चलाते हो, उधर चल चल इधर करो ठीक तरह से। सबकी मोटर बिगड़ी हुई है, चलाते हैं किधर चलती किधर, और वो बैठ के मोटर सुधरी हुई है, जो चलाते है जो चलते स्वतंत्रता है, प्रकृति के ऊपर स्वतंत्रता है भगवान की, ज्ञानी महात्मा की, मुझे सब प्रकृति ज्ञान की होता नहीं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मोटर नहीं आपकी बनते लाई हूँ चला भी हूँ, इस तरह करना चाहते और तरह और तरह। अर्जुन ने कहा महाराज अनिच्छन अभी, हम नहीं चाहते फिर भी पाप का आसन क्यों हो जाता है, कि कामना है भी तो भाई वो कामना प्रकृति के संग से है, वो खराब देती है। और बोलो, खूब बोलो, ना गुण में भगवान है ना भगवान में गुण है, परंतु सब गुणों में भगवान है। क्यों भगवान से कोई चल तो है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, तो व्यापक है, उनमें मैं भी मेरे में नहीं है, मेरे सोचते हैं सब गुणों में तद्रूपता भगवान की नहीं है। कार्य होंगे, सात्विक कार्य भगवान के द्वारा होगा, राजसी काम भगवान द्वारा होगा, तामसी काम महान हिंसा का काम हत्या का काम भगवान के द्वारा होगा, तो क्रियाएं सात्विक राजसी काम सब सब होगी, पर क्रियाओं में ना भगवान है ना भगवान में क्रिया है। कुर्वन न भी न लिप्य थे, करता हुआ भी नहीं लिप्त होता, रहते हुए रहते हुए भी नहीं है। आप गीता भवन में रहते हो पर गीता भवन में नहीं हो, हजम रहते हो गया गीता भवन से, आगंतुक हो, जो आगंतुक है क्रिया भगवान जो हजम रहते हैं, आप गीता भवन में रहते हो अपने गीता भवन में नहीं रहते हो, अपने घरे रहते हो, याद आती है घर की, इतने बैठे हैं हमारी छोड़ कहते हैं हमारी है ही नहीं, ये तो सुनने के लिए अपनी मानी, कहने के लिए मैंने मानी, अपनी छोड़ दी। खूब पूछो, जो संदेह हो जो पूछो, आदमी देखो आप लोग पैसा कमाते हो बड़ी कठिनता से, फिर मिट्टी का घोड़े क्यों लाते हो, मिट्टी का बजाय मिट्टी के घोड़े क्यों लाते हो, क्या पैसा मिट्टी में खर्च करने लिए है, मन छोरा वैसे ही राजी वजन क्या करे, इस छोरा ऐसी से राजी इस वास भगवान की है, फिर मिट्टी का घोड़े पैसा खर्च करे मिट्टी के घोड़े में, अब छोरा चाहे खेलना चाहे, इसलिए भगवान का ये बालक है खेलना चाहे, ओ महाराज और मिट्टी को घोड़ा खेल लो, अब जन्म और मरो जन्म मरो तमाशा।
कहते हैं ज्ञान मार्ग शरणागति में चलते हैं तो ज्ञान की बातें याद आती है, ऐसे समय में शरणागति पूरी नहीं हो सकती, समर्पण भाव नहीं हो सकता, आपने कहा कि एक मार्ग पे चलते हो तो उसी साधना से लो, दूसरा मार्ग उसमें मत
करो, ठीक है,
हम क्या करें, ज्ञान की बातें याद आती है,
ज्ञान की बात याद आती है तो ज्ञान की सुनी हुई सीखी हुई याद आती है, आपका मार्ग थोड़ा ही हो, मार्ग तो भक्ति का है शरणागति का,
करें क्या उस समय,
करेंगे भगवान है जो आवे याद वो भगवान है, मतलब प्रसन्न नान्य तो भगवान की स्वयं कोई है ही नहीं, ज्ञान भी भगवान है, ज्ञान रूप भी भगवान ही है, भगवत स्वरूप है, जो याद आ जाए, मैंने पत्थर याद आ जाए, गंगा जी याद आ जाए, ज्ञान बात आ जाए, कोई याद आवे जो भगवान है, एक बात याद रखो हमारे प्रभु है, अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान है कई रूप में आओ, एक मंत्र याद रखो कि मेरे प्रभु है, अब किसी स्वांग से आओ महाराज आप बस, फिर कोई हर्ज नहीं, आपके कुछ निर्लेप नहीं हो, निर्लिप्तता का हो जाए,
चिंतन ध्यान ये करना पड़ता है, चिंतन ध्यान ये करने में आता है, जैसे आप
देखो एक बात क्या भी हो गया, सत्संग कुछ दिन करो और कुछ दिन समझो, नहीं तो आप तो आरंभ के हो, कैसे समझोगे, हमारे भाई बहुत से है ना, ये बिल्कुल आरंभ के हैं। अब ज्ञान की बात कैसे समझेंगे? हमने क्या पूछा?
पूछा नहीं, कुछ बोलना ही चाह रहे थे।
अच्छा, बहुत सर।
मैं चाह रहा, जैसे आपने गीता ने कहा कि एक करण सापेक्ष शैली है और एक
कर्ण निरपेक्ष
शैली है, और अर्जुन को कर्ण निरपेक्ष शैली से ज्ञान करवाया हुआ है। तो जैसे चिंतन ध्यान ये तो करने में आता ना, अभ्यास
तो कर्ण सापेक्ष हुआ है।
हाँ।
ज्ञान जो भयास है, वास ज्ञान नाम किसका है? ये पुस्तक है, ये भी ज्ञान है, परंतु स्वरूप का अनुभव होने इसका नाम ज्ञान है। तो स्वरूप का अनुभव चिंतन करने में नहीं आता है, ये चिंतन में आता है। सहज अवस्था में क्या नहीं रहता है, क्या रहता ही नहीं होता है, क्या है, क्या उड़ जाती है, ये जानना चाहते हो तो इनको छोड़ो, ये पकड़े हुए नहीं जान सकोगे। मानो जड़ को पकड़े हुए चेतन को सूर्य कैसे समझोगे? पूछो तो मैं बात कहता हूं उसमें प्रविष्ट होकर पूछो, जहां की बात करते हूं वहां से पूछो, जो नहीं पूछ सकता। और बोलो, नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी 17 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।